प्यारे बाबा के घर हमने देखा कि कल्याण के भाई बहने पहली बार भट्टी करने आए हैं। पहली बार है या उससे पहले भी किया है? हैं? पहली बार आए हैं तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बाबा ने देखो आप सबको कहाँ से चुना है, एक ऐसे स्थान से बम्बई, बम्बई में भी कल्याण, बम्बई बाबा की शुभ संकल्पों की, और साथ साथ बाबा जो है हमेशा वहाँ बम्बई भी जाते थे। आपको मालूम है यहाँ बाबा के टाइम पर बहुत ठंडी होती थी, बाबा के टाइम पर यहाँ ना कोई गर्म साधन थे, और उस समय बाबा के टाइम पर जब बहुत ठंडी होती थी तो रमेश भाई हमेशा बाबा को कहते थे बाबा आप बम्बई में आकर के रहो। और उस समय बाबा क्या करते थे, ना तो ये गद्दे थे ना ये सोफा था, प्लेन एक दरी सी बिछी हुई होती थी, और बाबा जब कभी भी गर्म कपड़ा ज़्यादा नहीं डालते थे। बाबा जब क्लास में आते थे तो एक हल्की सी जिसको राजस्थानी रजाई कहते हैं बाबा ओढ़ करके आते थे, और बाबा कहते थे गोदरी में लाल बैठा है, शिव बाबा की गोदी में बैठा हूँ, शिव बाबा ने मुझे अपनी गोदी में बिठाया है, शिव बाबा की गोदी में बैठा हूँ और यहाँ पर भी गोदरी में लाल बैठा हूँ। तो बाबा जाते थे बॉम्बे, और बॉम्बे में जाते थे वाटरलू मेंशन पर, वहाँ पर एक छोटा सा स्थान था, वहाँ थे कभी रमेश भाई ध्यान देते थे, मम्मा भी वहाँ जाती थी, मम्मा की भी जब थोड़ी सी तबीयत हुई तो रमेश भाई ले गए उनको अपने घर में रखा। तो बॉम्बे वाले जो हैं कई प्रकार से इनका भाग्य बहुत ऊंच है। और दूसरी बात बाबा क्या कहते हैं, बम्बई सतयुग में होगा कि नहीं, अब बताओ होगा, माताएं बोलो नहीं होगा, क्यों? सागर तो होगा ना, हैं? आपका कल्याण सेंटर नहीं होगा हैं? अलका बहन होगी कि नहीं होगा कि नहीं? देखो बम्बई जो है इसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जब भी कोई प्रोग्राम होता था बाबा कहते थे बम्बई जो है नर देशावर है, नर देशावर मीन्स भरपूर है, सेवा की कई प्लानिंग वहाँ से निकली, और वहाँ पर सारी दादियाँ देखो हमारी ब्रिजिंद्रा दादी और दूसरा पुष्पिंद्रा दादी, ये सब दादियाँ वहाँ रही, दादी प्रकाशमणि वहाँ पर रही, दीदी मनमोहिनी रही, मम्मा रही, शील दादी रही, जिस चीज का किस किस का नाम गिनती करें आपने तो देखा ही नहीं होगा, जिसने अच्छा ब्रिजिंदर दादी को देखा वो हाथ खड़ा करो, थोड़ी टीचर बहनों को छोड़ के, टीचर बहनों ने तो देखा है, और जिन्होंने पुष्पिंद्रा दादी को तो नहीं देखा होगा, कोलाबा में थी पुष्पिंद्रा दादी, और वहां पर देखो रमेश भाई देवय भाई और दादी ये तीनों मिल करके प्रदर्शनी के नए नए चित्र बनाए। तो रमेश भाई का आइडिया था कि कोई ऐसा साधन निकालें, बाबा कहते थे प्रोजेक्टर जो है ये सेवा बहुत ठीक तो है लेकिन बाबा को ज़्यादा पसंद नहीं आता था, बाबा कहते थे प्रोजेक्टर से दिखाते थे ना तो उससे में क्या होता था अंधेरा करते थे, बाबा कहते पता नहीं अंधेरे में कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो बाबा कहते थे कोई और दूसरा साधन होना चाहिए। तो रमेश भाई ने एक आइडिया निकाला, और जब आइडिया निकाला प्रदर्शनी का तो बाबा से पूछा बाबा इसका नाम क्या लिखे, तो बाबा ने कहा या तो लिखो गेट वे टू हेवन, क्योंकि वहाँ है ना गेट वे टू इंडिया, है ना बॉम्बे को क्या कहते हैं गेट वे टू इंडिया, बाबा ने कहा गेट वे टू हेवन, और लिखो वर्ल्ड रिन्यूअल, विश्व परिवर्तन, परिवर्तन करने की प्रदर्शनी, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, विश्व परिवर्तन की आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो ये प्रदर्शनी बहुत जगह चारों तरफ ही किया था। फिर रमेश भाई ने बाबा को कहा बाबा आप बॉम्बे में आओ ये प्रदर्शनी देखने के लिए, तो शिव बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जाएगा तो शिव बाबा साथ में जाएगा, शिव बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा और ये रथ भी नहीं जाएगा। फिर रमेश भाई को कहा गया कि आप ये प्रदर्शनी माउंट आबू में ले आओ, तो तो 1966 में पहले भारत के कई स्थानों पर तो प्रदर्शनी लगाई थी और बहुत लोग देखने के लिए आते थे। तो पहले एक प्रदर्शनी लगाई थी कलकत्ता में लगाई ना, तो वहाँ कुछ लोग एंटी थे और कुछ लोग जो है वो प्रदर्शनी, कोई ऐसे होते ना जवान लड़के होते, उनको लगा दो कहीं आग लगाएंगे कहीं कुछ लगाएंगे। तो बाबा ने कहा किसी, उस समय अखबार वाले किसी ने गलत न्यूज़ डाल दी थी, तो बाबा ने कहा, उनको सब बताया बाबा को, बाबा ये ऐसा हो गया है। बाबा ने कहा उनको एक चिट्ठी लिख दो। बाबा ने कहा क्या चिट्ठी लिखो, पता है क्या बोला था, उनको एक चिट्ठी लिखो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा वही। तो बाबा ने कहा ये चिट्ठी लिखो, उनसे कोई बहस नहीं करनी है, उनसे कोई बात नहीं करनी। बाबा ने कहा देखो आपको पता है वो कितने बड़े फ्रेंड है आपके, पता है कि बाबा ने कहा आप बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कम बुद्धि होती है। बाबा ने कहा देखो आपके पास साधन नहीं है जो आप जगह जगह जाकर के लोगों को संदेश दोगे, तो वो आपे ही अखबार में न्यूज आएगा तो वो लोग आपे देखने आएंगे। तो सचमुच ऐसा हुआ कि इतने अखबार वाले इकट्ठे हो गए कि ये क्या है, कौन सी प्रदर्शनी है। जब आकर के देखा ना तो बोला ये तो बहुत अच्छी है। तो बाबा ने कहा देखो कितना बड़ा संदेह। बाबा कभी भी किसी बात में ना खुद निराश होते थे ना बच्चों को निराश होने देते थे। बाबा कभी भी नहीं कहते थे कि बच्चे किसी भी चिंतन के, किसी भी बात के बारे में चिंतन करो। बाबा ने कहा ड्रामा में ये सीन था, अभी भी हुआ है, पहले कल्प पहले भी होगा, फिर क्या होगा बताओ ना, कल्प के बाद फिर होगा, होगा ना, फिर क्या करेंगे, चिंता करेंगे। तो बाबा कहते चिंता नहीं है, हर दृश्य को साक्षी होकर के देखो, शुभ भावना से देखो, हर दृश्य के अंदर कल्याण ही कल्याण है। तो 1966 में ये प्रदर्शनी यहाँ माउंट आबू में लाए थे। माउंट आबू जो अपना आध्यात्मिक संग्रहालय है ना, उस संग्रहालय के सामने उस समय विश्राम भवन था, वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई थी। मई जून का महीना था और उस समय बाबा ने सब महारथियों को यहाँ बुलाया था, सब दादियों को कि यहाँ आओ, और ख़ास करके जो ड्यूटी दी थी प्रदर्शनी को संभालने के लिए वो था रमेश भाई, निर्भय भाई और रतन मोहन दादी मेन थे, और बाकी तो सब दादियाँ आती थी। और वो प्रदर्शनी एक ऐसी थी कि वहाँ से इतने टूरिस्ट, क्योंकि नक्कीली के पास है ना बहुत टूरिस्ट आते थे, और वो प्रदर्शनी से भारत के अंदर खास करके गुजरात में कई सेंटर खुले। तो फिर बाबा को शुभ संकल्प हुआ कि प्रदर्शनी से इतनी अच्छी सेवा है तो माउंट आबू में परमानेंट स्थान होना चाहिए। तो बाबा ने रमेश भाई को बोला कि यहाँ माउंट आबू में एक परमानेंट स्थान हो, एक म्यूजियम बने। बाबा ने कहा एक म्यूजियम बनाना चाहिए। तो फिर एक दो जगह देखी तो उस प्रदर्शनी के स्थान के अपोजिट, अभी जो आध्यात्मिक संग्रहालय है ना, तो वो उस समय किसी का था जगह, तो उससे बातचीत किया और बातचीत करके रमेश भाई ने सारा फाइनल भी किया, लिखा पढ़ी भी हो गई। जनवरी 18 जनवरी 17 रात तक सब कुछ हो गया था। तो रमेश भाई ने बाबा को बताया कि ये सारा काम हो गया, मैं आ रहा हूँ। तो बाबा तो फिर अव्यक्त हो गए और फिर उस म्यूजियम को बनाने की जिम्मेवारी दादी ने खास निवे भाई को दिया। तो निवे भाई ने यहाँ रह करके वो म्यूजियम बनवाया और उस म्यूजियम के अंदर अव्यक्त बाप दादा भी आए। अव्यक्त बाप दादा ने आकर के ओपनिंग भी किया और उस म्यूजियम में बाबा ने आकर के चक्कर भी लगाया गुलजार दादी के तन में आकर के, फिर छोटी मोटी जो करेक्शन थी वो किया। तो आज भी वो म्यूजियम देखने जाएंगे ना वैसा ही लगता है, उसके अंदर इतनी शोभा है, इतनी शोभा है क्योंकि वो बाबा ने बनवाया था। और फिर दूसरी बात है बाबा का जीवन जो है यहाँ रहते हुए बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल। बाबा हमेशा कहते थे कि आप सब रॉयल बच्चे हो, रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हो। दूसरी बात बाबा कहते थे आप राजधानी ऐसी राजधानी में जाने वाले हो, देवताओं को भी तो कहते हैं ना रॉयल, तो वो रॉयल संस्कार हमें अपने जीवन के अंदर धारण करने। तो रॉयल संस्कार में बाबा ने पहली बात कही कि ब्राह्मण जीवन की मर्यादा। बाबा क्या है, बाबा हमेशा कहते थे इतना बड़ा भाग्य मिला, कल भी बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन जो है, ब्राह्मण परिवार जो है वो देवताई परिवार से भी ऊंच है, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण सच्चे आप हो, तो सच्चे ब्राह्मणों को क्या करना है कि अपने सब नियम और मर्यादाओं का पालन करना। फिर बाबा कहते हैं आप बच्चे सौभाग्यशाली हो। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, भाग्यशाली कौन है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, और सौभाग्यशाली कौन है, थोड़े, कईयों ने तो हाथ ही नहीं खड़ा किया, क्यों। पद्मा पदम भाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है, आप भूल गए, आप तीनों ही हो। कैसे तीनों हो, जब जन्म लिया आपने कभी सोचा बाबा हमको अपना बनाएंगे, जन्म लेते ही बाबा ने इतना बड़ा भाग्य दिया और जन्म लेते ही बाबा ने कहा ये मेरे नूरे रतन है, ये मेरे आंखों के नूर हैं, विश्व के सितारे हैं, कितने टाइटल दिया। उस दुनिया स्कूल में पढ़ने जाओ, पहले पढ़ाई करेंगे तब जाकर के इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा, पहले तो नहीं बनता ना। तो जन्म लिया भाग्य से, सौभाग्य मिला बाबा के द्वारा अनेक प्रकार के वरदान। देखा आपने कितने वरदान है किसके पास कि नहीं। मिलिट्री में जाओ ना तो वहां उनको एक मेडल होता है, ये किसी को एक मेडल है, किसको दूसरा मेडल है, किसको तीसरा, किसको चार है, किसको पांच है, और आप अपने मेडल देखो कितने हैं। फरिश्ते की ड्रेस देखो, हर फरिश्ते की ड्रेस में कितने स्टार्स लगे होंगे, चमचम चम करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो वरदान बाबा ने दिए वो है सौभाग्य की निशानी। पद्मा पदम भाग्यशाली कौन बनेंगे, बताओ कौन बनेंगे, आप बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जो बाबा की श्रीमत के कदम पर कदम रखते, है ना। बाबा कहते श्रीमत एक ऐसी चाबी है जो सब कुछ खजानों को खोल देती, श्रीमत पर चलते हैं तो हर प्रकार की प्राप्ति होती है, कभी भी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होगी। कभी कहेंगे मैं योग तो बहुत लगाता हूँ लेकिन मेरा योग तो लगता नहीं है, तो बाबा कहते ऐसा नहीं है, बाबा प्यार करे और आप ना करो ये कभी हो ही नहीं सकता। बाबा तो अपने बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं, तो बाबा के पास यहाँ बच्चे आते थे ना, बाबा बहुत प्यार करते थे और बाबा कहते थे आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे। आप देखेंगे वहाँ एक चित्र बाबा का है, दोनों हाथ सामने किए हुए हैं, आओ मेरे लाडले बच्चे। तो जब पार्टी आती थी ना तो बाबा आंगन में मिलते थे, और बाबा जब आंगन में मिलते थे बाबा बहुत प्यार करते थे। फिर बाबा प्यार करते, फिर बाबा कहते अच्छा जाओ फ्रेश होकर के आना। फिर बाबा के पास आते थे तो फिर वहाँ उस समय कहते थे हमको बाबा से मिलना है, तो बहनें कहती अभी तो मिले हो, कहते बाबा से कहाँ मिले हैं, बाबा से मिलना मिस टोली खाना है। आपके सेंटर पर रोज टोली मिलती है, रोज मिलती है क्लास के बाद कि नहीं है, रोज तो नहीं मिलती है ना। बाबा के घर में शुरू से लेकर के बाबा का बच्चों से इतना प्यार, क्लास के बाद बाबा बच्चों को टोली खिलाते थे और आज भी वो नियम चल रहा। मुरली क्लास के बाद सबको टोली मिलती है ना। अच्छा बाबा इसमें बहुत परीक्षा भी लेते थे, एक बार बाबा ने कहा अच्छा आज बाबा बच्चों को टोली दे रहे हैं, सब प्यार से खाओ। फिर सबने टोली खा लिया, फिर बाबा ने कहा अच्छा वो बच्चे बताओ जिन्होंने बाबा को याद किए बिना टोली खाई है, वो हाथ खड़ा करो, बाबा उसको डबल टोली देंगे। अच्छा दो चार बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, हमको डबल टोली मिलेगी, और बाबा तो बाबा ही हैं। बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा बाबा ने कहा बताओ क्या भूल की। बाबा बाबा को याद किए बिना मैंने टोली खा ली। बाबा ने कहा ना आज ये पक्का करो, तो बाबा एक तरफ लेसन, एक तरफ पक्का, दूसरा तरफ प्यार। हर शिक्षा को बाबा ने इतने प्यार से दिया कि एक्यूरेट भी रहो, ध्यान भी रखो और साथ साथ ये करो। फिर बाबा जो है बहुत लाइट भी थे। बाबा कहते थे ये ब्राह्मण परिवार जो है ना सूखा परिवार नहीं है, खुशियों से भरपूर है, नाचो गाओ खाओ पियो मौज करो लेकिन खुशी में रहो। और फिर बाबा बच्चों को कभी सैर पर ले जाते थे, पहाड़ी पर ले जाते थे, और बाबा जब पहाड़ी पर ले जाते थे तो बाबा कहते जैसे पहाड़ी पर कदम जो है संभल संभल के रखते हैं, अगर पांव फिसला ऊपर से नीचे है ना, तो बाबा कहते थे ये श्रीमत का कदम है वो बहुत संभल संभल के रखना है। फिर बाबा कभी कभी बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे। बाबा तो हाईएस्ट पर्सनैलिटी, बाबा में दो पावर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अच्छा जब खेलते थे तो बाबा लंबे भी और एकदम, और खेलते थे तो बाबा हमेशा जीत जाते थे। तो कई बार क्या होता था बच्चों को लगता था बाबा तो हर समय जीत जाते। एक बार बाबा ने बच्चों को खुश करने के लिए ऐसे खेले कि बच्चे जीत गए बाबा हार गए, तो सारे बच्चे कह रहे आज बाबा हार गए बाबा हार गए। बाबा ने कहा हाँ बच्चे बाबा हारे नहीं, बच्चे बाबा के गले का हार बन गए। तो बाबा उनको जैसे कुछ ना कुछ सिखाते थे। तो बाबा ऐसे कहते थे कि कोई भी बात में हमको नहीं रहना है। तो एक बार की बात है बहुत समय पहले की, हाँ बाबा जो है एक बार बगीचे में पानी दे रहे थे, कोई लोग आए और कहा कि हमको, बाबा को देख के बोला यहाँ का जो हेड है ना उससे मिलना है। बाबा ने कहा अच्छा आपको उससे मिलना है, अच्छा अच्छा आओ आओ। तो बाबा ने तो वो पानी डालने के गार्डन में पानी डालने के लिए वो ड्रेस डाली हुई थी, तो बाबा ने कहा आओ आओ। उनको रिसेप्शन में बिठा दिया और उनको कहा अच्छा मैं उनके यहाँ के हेड को आपके पास भेजता हूँ। तो बाबा ने दो बहनों को भेजा, बोला नहीं हमको तो यहाँ के हेड से मिलना है। फिर बाबा को कहा गया बाबा आओ, और जब बाबा आए तो बाबा को देखते वो तो हैरान हो गए, ये क्या ये क्या, यही तो है जो गार्डन में देखा था हमने। कहते बाबा बाबा आप वही हो ना जो भी गार्डन में पानी दे रहे थे। बाबा मुस्कुरा रहे, बाबा ने कहा हाँ। बाबा ने कहा आपको नहीं पता है तुम सब बच्चे भगवान के बगिया के फूल हो। बाबा विश्व का मालिक जो है बनाते हैं, सबको स्नेह का पानी देते हैं, और जब मैं गार्डन में पानी देता हूँ फूलों को तो मुझे आप सभी बच्चों को स्नेह की भावना देने का भी ये शुभ संकल्प आता है। तो इसलिए बाबा जो है बच्चों से बहुत हंसते भी थे हंसाते भी थे। और मधुबन की हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में ही 5 मिनट में आपको सुनाऊंगी, लंबा नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि आप कब से बैठे बैठे सुन रहे, थक तो गए ना, भूख लगी है कि नहीं, नहीं पक्का भूख तो नहीं लगी, सुनते सुनते थक गए, कितना लंबे लंबे क्लासेस सुने हैं, अभी शाम को बहुत सारी क्लासेस सुनी, हार्ट के ऊपर सुनी ना, क्या क्या सुनाया। लेकिन बाबा ने क्या बोला है, बाबा ने कहा इन बातों में अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, संगम युग के अंदर शरीर भी वैल्यूएबल है, लेकिन करना है क्या, बाबा के दिल में बैठो। कभी कभी बाबा से पूछते हैं ना, बाबा कहते हैं, बाबा को कई बच्चे कहते बाबा कहाँ है, कहते मैं तो बच्चों के दिल में बैठा हूँ। और बच्चे कहाँ हैं, कहाँ बैठे आप हैं, तो बोलो ना बाबा हमारे दिल में और हम बाबा के दिल में, तो बस और क्या चाहिए। जो बाबा के दिल में बैठे, भक्ति में तो कितनी कहानी सुनाते हैं, हनुमान की कहानी सुनाई पते ने सुनिए ना, उसने चीर फाड़ के दिखा दिया कि राम मेरे दिल में है, ठीक है ना। तो ऐसे सदा लक्ष्य रखो कि हम बाबा के दिल में हैं और बाबा हमारे दिल में है। आपने सुनी होगी एक कहानी भक्ति की कि हम एक बार नारद जी लिस्ट बना रहे थे, तो लिस्ट बनाया तो उसमें बताया ना कि हनुमान का नाम ही नहीं है, पहला भगत है उसका नाम नहीं है। तो वो देखता है कहता मेरा नाम नहीं है, कहा ये वो लिस्ट हैं जो कि भगवान को याद करते, लेकिन तुम्हारा नाम उस लिस्ट में जो भगवान तुझे याद करते। तो अभी हम कौन हैं? कौन सी लिस्ट में हो? हैं? कौन सी लिस्ट में हो? बोलो ना भाई, बोलो। भगवान थोड़ी बोलो, हमारा बाबा हमें याद करता है, हमारा बाबा हमें ढूंढता है। आपको कहाँ कहाँ से ढूंढा, कहाँ कहाँ से ढूंढा, पता है कहाँ कहाँ से ढूंढा? सारी विश्व के अंदर बाबा कहते हैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों में एक साधारण बाबा के बच्चे। बाबा के बच्चे कितने साधारण हैं। कहते हैं ना कि हमको भगवान मिला तो हंसते हैं, कहते हैं आपको भगवान मिला, उनको पता ही नहीं कि बाबा ने हमको चुन लिया। तो आपको बाबा ने चुना या आपने बाबा को ढूंढा? हैं? पक्का ऐसा तो नहीं है कि कहेंगे हमने बाबा को बहुत ढूंढा? ढूंढा ही नहीं है, आराम से बॉम्बे में रहते थे, मजे करते थे, थोड़ा ज्ञान सुन लिया, कभी इधर चले गए। और खास करके हमारी अलका बहन बाबा की लाडली, बहुत शुरू से लेकर के प्यार से सेवा करती चली आ रही है, दादियों की पालना ली है और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। तो अलका बहन आप सबको यहाँ लेके आई, अलका बहन के लिए ताली तो बजाओ। बहुत अच्छी तरह से सेवा करती हैं। तो बाबा के टाइम पर ऐसा हुआ कि जब बाबा अव्यक्त हुए ना, तो फिर अव्यक्त बाप दादा पहले दादियों से मिलने बाबा के कमरे में आते थे, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, वहाँ पर भी हम मिले, और साकार में भी बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे। और मुरली चलाते जाते बाबा कभी उठ खड़े होकर के सबको दृष्टि देते थे, और दृष्टि लास्ट तक जा करके बाबा उनको दृष्टि देते थे। जैसे बाबा दृष्टि देते तो सब के सब जैसे एकदम ऐसे उड़ता पंछी बन करके बाबा के पास चले जाते थे। उसमें बाबा उनको बहुत प्यार से करते थे, और बाबा कभी कभी उनको घुमाने भी ले जाते थे, कभी बाबा नक्की लेक की तरफ ले जाते थे, कभी बाबा कहाँ पर ले जाते थे। तो फिर क्या हुआ, जब बाबा अव्यक्त बाबा आते थे तो जो हिस्ट्री हॉल है इतना भरा होता था, खचाखच भरा होता था, सबके सब नीचे ही बैठते थे, किसी को बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी। और बाबा के टाइम पर हम सब जो है ना वो पट पर, पट में जमीन पर सोते थे। तो बाबा कहते थे ये सब कौन है मेरे, पट राजा और पट रानिया। तो अभी क्या है आप हैं, अभी क्या है, सोफा राजा हैं, सोफा राजा कहेंगे, पलंग राजा या पलंग रानिया। बाबा के टाइम पर जब हम आते थे ना, उस समय हर एक अपना बिस्तर लेके आता था, बिस्तर भी लाते थे, अपने ही सामान लाते थे, कुछ भी यहाँ तो होता नहीं था, खाली था। और बाबा के टाइम पर सब कुछ अपना ही लेकर के आते थे, लेकिन बाबा ने अब इतने साधन दे दिए कि बच्चों को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो। बाबा के टाइम पर गर्मियों में भी कोई पंखे नहीं थे, और उस समय कुछ पंखा नहीं था, रात के टाइम पर मच्छर आदि होते थे ना, एक लंबी सी होती ना जैसे कढ़ाई, उस खाना निकालते ना जिससे केवी जैसी होती है, इतना आगे गोल गोल और पीछे डंडा, उसके अंदर ये मसाला डाल करके आग लगा के अंगारे रख के उसमें थोड़ा मसाला डाल के ये मच्छरों को भगाने का करते थे। अभी तो पंखा है, मच्छर भगाने के वो लगा देते, तो उस समय ऐसा करते थे। और बाबा खुद जाते थे और देखते थे, चक्कर लगाते थे, और बाबा पूछते थे बाबा बच्चे ठीक हो, तो बच्चे क्या कहेंगे, जिसके पास बाबा आए वो क्या कहेंगे, ठीक हो या नहीं है? सब कहेंगे नहीं नहीं बाबा हम बहुत ठीक हैं। अभी भी बाबा आपके पास चक्कर लगाते, पता है ना लगाते हैं, तो बाबा ने तो अभी कितने आराम से रखा, आराम से रखा है ना, कितना आराम से रखा है। तो फिर उस समय बाबा अव्यक्त बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे। हिस्ट्री हॉल के बाद फिर एक बार, शायद अलका बहन को याद होगा, एक बार बाबा के बच्चे ढेर आ गए। अब दादी कहे क्या करें, इतने बच्चे आ गए। तो उस समय बाबा का प्रोग्राम आंगन में रखा था, दो टाइम खाना, सुबह 11 बजे के अंदर नाश्ता और दोपहर का भोजन होता था, शाम को 4:30 से 5:30 के अंदर रात का भोजन होता था। तो अव्यक्त बाप दादा एक बार यहाँ पर आए थे आंगन में, और चारों तरफ बाबा के बच्चे बैठे हुए थे। फिर सब दादियों ने और भाइयों ने मिल करके प्लान किया कोई दूसरा हॉल बनाया जाए, पांडव वन तो एक ही छोटा सा स्थान था। तो ये जो जहाँ पर आप बैठे हैं ना, ये पहाड़ी थी, इस पहाड़ी पर अंगूर की बेल थी, और बाबा 24 जून को सभी सेंटर्स पर अंगूर का भेजते थे। 24 जून जो है मम्मा डे था, तो अंगूर जो होता था वो बड़ा अंगूर इतना, उसमें बीज नहीं होता था। तो बाबा क्या दो ग्रुप बनाते थे, एक ग्रुप जाता था यहाँ से आबू रोड से सारा राजस्थान होते, जयपुर अजमेर होते, दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, और एक ग्रुप जाता था गुजरात से बॉम्बे। और बॉम्बे वाले तो इतने लक्की थे क्योंकि दादियाँ वहाँ रहती थी, बाबा हर प्रकार की टोली वहाँ भेजते थे। और बॉम्बे से हमारे पास एक कभी कभी लाल केला आता था, लाल केला, तो लाल केला है ना बॉम्बे का फेमस मोटा मोटा, तो मैं आपको बताती हूँ, बाबा ने एक बार वो लाल केला मनोहर दादी करनाल में रहती थी वहाँ पर भेजा, और मैं भी वहाँ पर कुछ दिन सेंटर पर रही। अब हमको तो कुछ अकल है नहीं क्या है केला, और जब भी पूरा पक वो तो काफ़ी देर चलता है, मनोहर दादी कहीं प्रोग्राम में गई और वो ऊपर लाल वाला थोड़ा पका पका दिखाई, मैंने उठा के बांट दिया सबको। मनोहर दादी आई कहती वो केला कहाँ है, मैं बोला दादी वो केला तो पक रहा था, कहती पक कहाँ रहा है, तो बाबा ने भेजा, मैंने कहा दादी मैंने वो केला भेज दिया। तो मुझे याद आता है कि जब ऐसी चीज़ आती थी तो बॉम्बे से आम आता था और केला आता था, बाबा खुद संभाल करके एक एक को याद करके बाबा भेजते थे। कोई चीज़ इधर दिल्ली हरियाणा साइड आती थी तो बाबा बॉम्बे में भेजते थे, और बॉम्बे से जो आती थी वो बाबा सब दादियों के पास भेजते थे। तो इस प्रकार से मुझे याद आता है कैसे हम ना बाबा की दिए प्यार भरी वो याद प्यार जो होता था, और बाबा का हर रोज लेटर भी आता था, हर रोज लेटर, इधर से वो दादियाँ लेटर लिखती थी, इधर से बाबा लिखता था। दादी बड़ी भी सुनाती है कि हर रोज हम बाबा को पत्र लिखते थे और बाबा हर रोज यहाँ से पत्र भेजते थे। तो इतना प्यार बाबा ने बॉम्बे वालों को किया है, तो आपका कितना बड़ा भाग्य है ना भाग्य, तो अपने भाग्य के लिए ताली बजाओ हम। और दूसरा भाग्य क्या है, आपको ड्रामा अनुसार ऐसा स्थान मिला है जिसको नाम ही है कल्याण। बाबा कहते आप कौन हो बताओ, अभी बताओ हैं, हाँ टाइटल याद है, कल्याणकारी कौन है, हाथ खड़ा करो, विश्व कल्याणकारी कौन है, अच्छा विश्व का कल्याण कैसे करेंगे वो बताओ। बाबा ने कहा सारे विश्व में थोड़ी चक्कर लगाओगे, अभी तो मोदी की भी अपील होगी पूरे विश्व में नहीं जाओ, अपने स्थान पर रहो। देखा ना अभी वो क्या हुआ, अभी बाबा तो पहले से बताते हैं कि एक स्थान पर बैठ करके आप शुभ वाइब्रेशन भेजो, एक ही स्थान पर बैठ के शुभ वाइब्रेशन भेजेंगे तो सारे विश्व के अंदर पहुंच सकेंगे। अब सारे विश्व में पहुंचना है तो कैसे हो सकता है, अभी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक स्थान पर हम गए थे, पहाड़ी इलाका, और ऐसा इलाका चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। तो वहाँ पर गए तो क्या देखती हूँ कि एक बहन वहाँ पर है, तो उसको पूछा कि तुम यहाँ इधर फॉरेस्ट एरिया में कैसे हो, तो कहती मैं यहाँ पर बैठी थी और यहाँ रहती थी, बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया और बाबा ने मुझे अनुभव का, तो उसने वहाँ पर सेंटर खोल दिया। तो बाबा कहते ना कोने कोने में सेंटर होगा और वहाँ लोगों का जाना भी कठिन और बहुत मुश्किल था, उसने वहाँ सेंटर खोल दिया और वहाँ भाई बहने आने लगे। तो कहा ये पहाड़ी इलाके से हम बैठ करके पूरे विश्व के अंदर साकाश भेजते हैं। तो आप सभी को भी बाबा ने ऐसा टाइटल दे दिया है कि बॉम्बे नगरी में बैठ करके पूरे विश्व को साकाश देना, कि बॉम्बे ऐसा है जहाँ विश्व की आत्माएं आती हैं, बम्बई ऐसा है जहाँ विश्व के सेलिब्रिटीज भी रहते हैं, लेकिन आप उनसे बड़े सेलिब्रिटी हैं या वो है? हैं आप है ना, सेलिब्रिटी मींस बाबा के लाडले है ना, बाबा के आर्टिस्ट बच्चे हैं, वो तो एक नाम मात्र के हैं और उनकी लाइफ क्या होती है, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जो लाइफ है वो कितनी ऊंच और कितनी महान है। इसलिए आप सबका बाबा के घर के अंदर बहुत स्वागत है। फिर बाबा तो हमेशा कहते थे देश विदेश में सेंटर खुलेंगे, तो बाबा के टाइम पर जो था हम तो समझते ही नहीं थे, भारत में ही नहीं सेंटर 10-20 थे, बाबा के टाइम पर भारत में 10-20 सेंटर थे, बाबा अव्यक्त हुए तो सेंटर ही सेंटर खुलते गए, सेंटर ही खुलते गया, देश विदेश में भी सेंटर खुलते गए।